बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततोऽजय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक संख्या 55 दोहराइए सभी भक्त अहो बताच्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् अप्यासित विप्रियं तेषां हितं पूर्वं यतो भयम् अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् अप्यासित् विप्रियं तेषां इदं पूर्वं यतो भयम् अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् यासित् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। नंद महाराज तथा अन्य वाले विचार करने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया और उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। वालों ने सहज भाव से सोचा, क्योंकि हमारा कृष्ण निर्दोष है, अतः मृत्यु के वे कारण ही विनिष्ट हो गए जो उनके समक्ष उपस्थित हुए। कृष्ण का बाल बांका भी नहीं हुआ, यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जय श्री श्री राधा गिरधारी की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप सदा वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर निवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। भागवत भगीरथ में आए हुए सभी भागवत प्रेमी भक्तों का श्री राधा गिरधारी मंदिर की ओर से स्वागत करते हैं। सबसे अमूल्य समय शास्त्रों में वही माना गया है कि संतों के बीच में रहकर संतों की सभा मध्य भगवान की कुछ लीला कथा हरि बोल भगवान की कुछ लीला कथा की चर्चा हो जाए। सबसे अमूल्य पर सबसे टॉप मोस्ट कार्य कोई है तो वो यह है कि भक्तों के संग में भगवान की लीला कथा, बस यही है। हम कुछ पाने के लिए या तो कुछ प्राप्त करने के लिए जिस वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, और देवतागण कभी कभी प्रसन्न होकर कर्म इधर उधर करके कुछ दे भी देते हैं, वही देवता जो कर्म इधर उधर करके हम लोगों को दे देते हैं कोई कभी कभी, वही देवता भी सब अपना अपना कार्य छोड़कर यही करते हैं। सब ऋषि मुनि सब लोग यही करते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य किसी जीव का किसी व्यक्ति का यही है कि भक्तों के संग में बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन मनन किया जाए। यही श्रीमद् भागवत की कथा का थोड़ा सा प्रभाव है कि इसके संस्पर्श में आने मात्र से व्यक्ति का कल्मश दूर हो जाता है। भगवान के विषय में सुनने से, भगवान के विषय में कीर्तन करने से, भगवान के विषय में स्मरण करने से, भगवान को देखने से हृदय के जितने भी कलमश है वो कलमश दूर हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण कर रहे थे दूसरे स्कंद में, तब उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक गाया। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम, जिसके कीर्तन से जिसके स्मरण से जिसकी पूजा से जिसके अर्चन से लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। उन मंगल यश स्वरूप माधुर्यमय भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जिनके श्रवण मात्र से जिनके कीर्तन मात्र से जिनको देखने से कलमश दूर हो जाता है। देर लगती नहीं, सद्य तुरंत कलमश दूर हो जाता है। भगवान के निकट कोई व्यक्ति आता है तो नौटा भक्ति का प्रभाव, कि निकट आने मात्र से एक अंग की भी शुरुआत करने मात्र हृदय के कलमश दूर हो जाते हैं। और उनमें भी श्रवण सबसे प्रधान अंग है। संतगण कहते कि जिसका जितना अच्छा श्रवण होगा उसका उतना ही अच्छा कीर्तन होगा, और जिसका दोनों अच्छा होगा उसका ही स्मरण अच्छा होगा। हम लोगों का स्मरण का अभ्यास नहीं है, मतलब इतना नहीं है, क्योंकि हमारा श्रवण और कीर्तन ठीक नहीं है। एक स्थिति वह होती है जो याद करनी होती है ना, और एक स्थिति यह होती है कि अपने आप याद, भूलने से भी ना, तो हमारी पहली वाली स्थिति है। याद करने से याद आता है, तो सबसे अच्छा इसका श्रवण होगा। तीव्रता से कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो निश्चित रूप से वो भक्ति में धावन दौड़ने लगता है। तीव्रता का मतलब लोभ से, रूप गोस्वामी ने कहा है ना कि तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। भक्ति प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, एक ही कीमत है, एक ही प्राइस है, वो क्या है? तत्र लोल्यम अपि एकम मूल्यम, एक ही मूल्य है तत्र लोल्यम, उसके प्रति लोभ प्रकट हो जाना। साधु सभाओं मध्य, साधुओं की सभाओं में बीच में जाकर जैसे भिखारी भीख मांगता रहता है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही कोई व्यक्ति ऐसी ही लोलुपता प्रकाशित करता है तो निश्चित रूप से उसको भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम मीरा रोड वासी का सौभाग्य है कि यहाँ पर अभी दशम स्कंद भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाएं, मन मोहिनी बाल लीलाएं प्रारंभ हो गए हैं। अगले रविवार को हम लोगों ने एक असुर का उद्धार किया। कौन था वो असुर? बकासुर का तो आज होगा, शप्तासुर का 2 महीने पहले हो गया, वत्सासुर। इतना स्मरण हमारा ठीक है, कहने का भाव इसीलिए मैंने पूछा कि हमको 7 दिन पहले का नहीं याद रहता है तो उतना वक्त तो कैसे याद होगा कि हमने भगवान ने क्या क्या किया, उसका भाव क्या क्या था, यह सब तो प्रभु जी होकर जो कीर्तन कराते हैं, जो कहते हैं उसका काम है स्मरण करने का। हम लोगों तो क्या आके सुन लिया बस हो गया, फिर वही बात, वही मोदी, वही IPL, वही 2020। ये स्वभाव नहीं है भक्तों का, ये स्वभाव के विपरीत है। अगर भक्ति प्राप्त करनी है ना तो ये ग्राम्य वार्ता ग्राम्य कथा से जब व्यक्ति निवृत्त होगा तब इसमें मन लगेगा। हमको यह मालूम नहीं है कि शप्तासुर का वध हुआ कि वज्रासुर का हुआ, मतलब इतना हम स्मरण नहीं करते हैं, हम स्मरण नहीं कर पाते। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर वह नस देखता है और नस देख के कहता है कि क्या गड़बड़ी है ना। तो हमारा में यह सबसे बड़ी यह गड़बड़ी है, यह नस हमारी कमजोर है, स्मरण नस। और स्मरण नस इसलिए कमजोर है कि श्रवण बराबर नहीं है। गुजराती में कहे कि बोली गाय वाघो ले धीमा पी चारो चरे पी वाघो ले, है ना। वाघोले मतलब इन्हें पासू रिपीट कर, मतलब वाघोल भाई आदत नहीं थी, ગાય પાસેથી સૌથી મોટો ગુણ શીખવા જેવો છે કે શ્રવણ કર્યા પછી એને વાખોળવું, એટલે સ્મરણ ચિત્તમાં રહી જાય. તો યો પ્રસંગ આજ કિસકા વધ કરના હૈ, બકાસુર કા, ઉસકા હો ગયા શક્તાસુર કા ઓર વત્તાસુર કા. તો ગર્ભ સંહિતા એવમ શ્રી ગોપાલ શંભુ મેં ઇસ કથા કે પ્રારંભ મેં એક પ્લેટફોર્મ તૈયાર કિયા ગયા હૈ. તો વત્તાસુર કા વધ હો ગયા તો ઇતની બાતે વૃંદાવન મેં નહીં ફેલી થી, ક્યુંકિ કૃષ્ણ ને સબ બાલ બાલકો મના કિયા થા કે દેખો ભાઈ, આપ સબ લોગો ને જો દેખા હૈ વો કિસી કો કહેના નહીં વ્રજ મેં જાકે. બાલ બાલ બોલે કન્હૈયા એસા ક્યું, કૃષ્ણ ને કહા કે અગર ફિર સે હમકો આના હૈ ગૌ બછડો કો ચરાને કે લિયે, તો વરના અગર આપ લોગ કહ દેંગે તો હમારે ઘરવાલે હમારે માતા પિતા આને નહીં દેંગે. ઇસીલિયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને સબકો કહ રખા થા કિસી કો, લેકિન વૃંદાવન મેં તો યહ બાત પીલા શક્તિ કે પ્રભાવ સે કૃષ્ણ કી બાત સે સબ લોગો ને બાત માન લી. લેકિન મથુરા મેં કંસ કો માલુમ હો ગયા, ક્યુંકિ કંસ કે ગુપ્ત સર વહી દેખતે રહેતે થે કે કંસ કા આદેશ થા સ્પેશિયલ આદેશ કે જાઓ દેખો વ્રજ મેં ક્યા હો રહા હૈ, વૃંદાવન મેં અભી ક્યા હો રહા હૈ. વહી કંસ પ્લાન બના રહા થા કૃષ્ણ કો મારને કે લિયે. તો ગુપ્ત સર ને આકર કહા કંસ કો કે મહારાજ વત્સાસુર મારા ગયા. કંસ કે હૈ એ કેસે સંભવ હૈ, મહારાજ મારા ગયા. તો વહાં પર લિખા ગયા હૈ કે કંસ પહેલી બાર બેહોશ હો ગયા કે ઇતના બડા બલવાન બકાસુર મારા ગયા. તો વહાં પર ઉસકે જો નોકર ચાકર થે ઉન્હોને સબકો વૈદ્ય કો બુલાયા, પાણી પાણી કા છિટકાવ કિયા ઓર દવાઈ દી, સબ ઠીક હો ગયા. ઠીક હુઆ તો ઉન્હોને સભા એક બુલાઈ, અસુરો કી સભા. રાજા જૈસી હોતી હૈ વૈસી પ્રજા હોતી હૈ ના, તો ઉસકી સભા મેં સાધુઓ તો આયેંગે નહીં, વિચાર વિમર્શ કરના હૈ તો તો સબ કામી ક્રોધી લોભી મોહી હિંસા પરાયણ લોગ આયે ઓર સબ લોગો ને ડિસ્કસ કિયા. ક્યા ડિસ્કસ કિયા કે અબ કૃષ્ણ કો કૈસે મારે. કંસ કા હાલ તો બેહાલ થા, ઉસકો કુછ યાદ હી નહીં થા કબ ક્યા કરે, ભાન ભૂલી ગયો તો. ગુજરાતી માં એસે કહેતે કે ભાન ભૂલ ગયા. એક નોકર ને કહા કે આપકો યાદ હૈ આપ ઉસ દિન બતા રહે થે કે આપકા કોઈ મિત્ર હૈ બકાસુર નામ કા. આપને કહા થા કંસ કો યાદ હૈ, હા ઉસકો બુલા ઉસકો બુલા. તો પહેલે ક્યા બતાયા થા કંસ ને, તો ઉને એક બાર કહા થા કે કંસ જબ છોટા થા તબ વો ખેલ રહા થા, તો ખેલ મેં બકાસુર કા ઓર કંસ કા ઝઘડા હો ગયા, તો બકાસુર નિગલ ગયા કંસ કો. લેકિન કંસ ભી બલવાન થા, કંસ કોઈ કમ નહીં થા, કંસ ભી બલવાન થો. કૈસે ભી કરકે કંસ બહાર આ ગયા, વો બકાસુર કે મુંહ સે એક મુક્કા દિયા તો ગિર ગયા, લેકિન કંસ કે હૃદય પર થાપ પડ ગઈ બકાસુર કી. ઓર ઉસી સમય ઉસકી બહેન આઈ બકી પૂતના, પૂતના ને દેખા કે કંસ મેરે ભાઈ કે સાથ ઝઘડા કર રહે, લડ રહે, માર રહે. કંસ કો આહવાન કિયા કે કંસ તેરે મેં હિંમત હૈ તો મુઝસે લડ. કંસ ને સોચા કે યહ ઉસકા ભાઈ ઇતના બડા હૈ બલવાન, તો ઉસકી બહન કૈસી હોગી, कंस ने मन में ही विचार किया कि उसके साथ संधि कर लेना चाहिए। कंस ने कहा कि स्त्रियम स्त्रियों के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाता। ओहो स्त्रियम साध्यम युद्धम अहम न करो मैं, गर्ग संहिता में कहा गया है कि स्त्रियों के साथ में युद्ध नहीं करता। तो पुतना बोली तो फिर कंस ने मन में विचार किया कि इसके साथ संबंध बांध लेना चाहिए, भविष्य में काम आए। आज से तू मेरी बहन और बाप मेरा भाई, संधि कर ली तुरंत। यही दुष्टों का स्वभाव, बहन के साथ कंस के साथ दुष्टों के साथ संबंध बांधने से भी व्यक्ति का पतन हो जाता है और वैष्णवों के साथ संबंध जोड़ने से व्यक्ति का मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। संबंध का यह प्रभाव है, संघ का यह प्रभाव है। इसलिए जीवन में गलती से भी दुष्ट होते संघ मत कीजिए। अगर लड़ना भी है झगड़ना भी है तो भी साधुओं से ही लड़िए और झगड़िए। सभी असुर अपने पहले जन्म में या बहुत बहुत जन्म पहले साधुओं से झगड़े किए, साधुओं पर क्रोध किए, फिर भी उसका उद्धार सबका हो ही गया। लड़ना भी है तो साधुओं से। पुतना बहन बिचारी तो गए काम से, अब बप को आदेश दिया जाओ जाओ बप को बुलाओ तुरंत। कंस मन में ही सोच रहा है कि यह तो बहुत बड़ा भारी बलवान है, निश्चित रूप से यह कोई चमत्कार करेगा। बप आया, कंस ने कहा कि देखो भाई, सब वृंदावन की बातें बताई, सब कहा। बप कहा कि वही लड़का जिन्होंने मेरी बहन पुतना को मारा। कंस कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा घर, मुझे रहने दीजिए। कंस कहा बस डर गया, डरपो के इतनी, मैंने तो सुना था तुम बहुत बहादुर हो और वो छोटा सा बालक, वो छोटा सा है अभी, और तू इसके साथ कैसे भी करके उसको उत्साह दिया, बब को राजी किया और बप वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पाय इच्छन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाय इत्वा बहुर जलम। एक दिन की बात है, वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ गाय के बछड़े को लेकर वृंदावन की ओर गाय के बछड़े को चराने के लिए जा रहे हैं। बहुत अद्भुत मनोहर दृश्य हमारे आचार्यों ने प्रकट किया है। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में जाते थे तो नाचते कूदते, कभी कभी वंशी बजाते बजाते, पर वंशी की ध्वनि से वो वृक्षों को वो लताओं को रसाप्लावित करते करते जाते थे। शाम की बांसुरिया सुन के दिया जला नाची बंसी ऐसी टूटी गई ले शंकर जी के ध्यान। तो बंसी की महिमा, बंसी ऊपर अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक शास्त्र लिख दिए कि बंसी बंसी क्या चीज है। रूप गए पूर्णिमा के चांद, भगवान श्री कृष्ण आगे आएगा वैनो गीत में। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बंसी वांसुरी बजाते थे तो पूर्णिमा के चांद वहीं पर रुक गए। एक दो दिन नहीं छह महीना जमुना के निर्थिर हो गए, जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गए। शिव जी ऐसे ही बैठे रहते थे तो नाचने लगे। तो अपनी वंशी ध्वनि से वृंदावन के सब वृक्षों को रसाप्लावित करते करते भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को सराने के लिए वन में जाते थे। तो उनमें सरदार कौन था? दादा। कृष्ण ने सब सखाओं को कह दिया कि हमारा सरदार होगा दादा, और दादा की बात सबको माननी पड़ेगी। तो दादा ने देखा कि एक बहुत सुंदर सरोवर है, वहां कोमल कोमल घास है, तो यहाँ ही हम सबको रुकना चाहिए। तो सबने दादा का आदेश शिरोधार्य का किया और कहा कि ठीक है ठीक है। कृष्ण ने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, बछड़े खेलते खेलते कूदते कूदते नाचते नाचते आते हैं, तो उनको प्यास लगी होगी, तो हम सब जलाशय में जाकर उसको पानी पिला दें। तो सबने कहा ठीक है, सब बछड़ों को जलाशय में ले गया, पानी पिलाया, फिर बबूर जलम, फिर उन सब ने पानी पिया। ऐसा नहीं था कि वही सरोवर में पानी पिया, इसके बगल में एक दूसरा सरोवर था। जब वरुण इत्यादि देवताओं को पता चलता कि कृष्ण इस सरोवर में, तो ये लोग अपनी सेवा में लग जाते, सुवासित कर देते उस जल को, वायु को सुगंधित कर देते, बाल निर्मल हो जाते। ये सब देवता एडवांस में सेवा, उसको कहने की जरूरत नहीं थी। तो बगल में एक कहने का भाव है कि सरोवर था, उसका जल सुवासित सुंदर सुमधुर था, वहाँ सब सखाओं ने पानी पिया। ते तत्र ददृशुर बाला महासत्वम अस्थितम तत्र सूर्वज निर्विण्यम गिरे श्रृंगम विवस्थितम। पानी पी के जब लौट रहे थे तब उन्होंने देखा, क्या देखा, महासत्वम अवस्थितम, एक बहुत बड़ा जीव है, जीव को देखा। तो आपस में सखा चर्चा विचारणा करने लगे कि क्या होगा, ये कहीं बिजली से, कहीं पर्वत पर बिजली गिरी होगी और बिजली से पर्वत का शिखर टूट गया होगा। कोई कहता है नहीं ये नहीं होगा वह होगा, कोई सखा कहता है यह नहीं वह होगा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि निर्भिन्यम गिरे सिंगम युवश्यूतम। ऐसा लग रहा था जैसे वज्र से काटा हुआ पर्वत का कोई श्रृंग गिरा हो। तो यही बालक आपस में चर्चा कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कोई पर्वत का शिखर विखर नहीं था, क्या था, सवे बको नाम महान सुर बिक आगत्य सहसा कृष्णम तृष्ण तुंडो प्रसद बलि। वो बक रूप धारी वो बकासुर था। तो सब सखा आपस में चर्चा करते हैं। दाऊ जी को कहा सखाओं ने कि चलो उसको देखने के लिए थोड़ा उसके निकट जाए। दाऊ जी कहा चलो इसमें क्या है, सब लोग उसके निकट गए। सब बच्चे अलग अलग भाव अपना प्रकाशित करने लगे और डरने लगे। जब सखा डरते थे तो अभी किसके पास जाते थे, श्री कृष्ण के पास। सुख में भी कृष्ण के पास जाते थे और दुख में भी श्री कृष्ण के पास जाते। हम सुख में माया के पास जाते हैं और दुख में नारायण के पास जाते हैं। सुख में हरि भजे तो दुख काहे को हो। सुख में ही अगर हरि को कोई भज ले तो दुख काहे को है, तो दुख आता ही नहीं। लेकिन सुख में हम भूल जाते हैं, इसलिए कुंती महारानी ने भागवत में कहा है कि विपद संतुत सश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यच्छा तो पुनर्भव दर्शन। वास्तव में कुंती महारानी ने दुख नहीं मांगा, भगवान का दर्शन मांगा है। भवतो दर्शनम यच्छा तो पुनर्भव दर्शन, भवतो दर्शनम, अगर दुख आएगा तो आप बचाने के लिए आएंगे और आप बचाने के लिए आएंगे तो आपका दर्शन होता रहेगा, यह भाव है। भगवान का दर्शन हो वही सबसे बड़ा सौभाग्य। एक बात याद आ गई मथुरा प्रसंग में से, हरिसूरी जी महाराज कहते कि भगवान के दर्शन से सब मथुरावासी भक्त हो गए, इसलिए भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए, भगवान को देखते रहना चाहिए। भगवान को देखने से भगवान में आसक्ति बढ़ती रहती है। और हम लोग यहाँ से निकलते हैं हर रोज बीके से जाने के लिए, फिर भी भगवान का दर्शन करने का 5 मिनट का हमको सौभाग्य प्राप्त है। तो सब दुखी हो गए कि क्या है, क्या हो गया है। तो ये तो अंतर्यामी कृष्ण है, सब जानते हैं, उसके रोम रोम में सब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समा जाते हैं। कृष्ण कृष्ण क्या है, चलो भाग जाते हैं। तो किसी सखा ने कहा कि भागने से क्या होगा, देवता नहीं है, उसकी सांस जैसे ऐसे लगता है कि पृथ्वी को और स्वर्ग को दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है अपने सांस में लेकर। लगता है कि देवता दानव मृत्यु का सबका विनाश के लिए आया है। सब अलग अलग बात करने लगे, भागने का कोई सवाल नहीं है, अब हम कहीं पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमको निश्चित रूप से ये मार ही देगा। कृष्ण ने कहा कि डर गए सब, रुको मैं जाता हूं। सखा मना नहीं किया, क्योंकि सखाओं को याद था कि पूतना का वध हुआ है इत्यादि, असुरों का वध हुआ, निश्चित नारायण वारायण की कृपा उस पर है। तो किसी सखा ने मना नहीं किया। कृष्ण मंद मुस्कुराए, उसके अधरों पर एक रेखा छा गई और सुधा को देखकर थोड़ी देर में बाल बाल भी भूल गई है मधुर हास्य को देखकर। लेकिन तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां से खड़े हुए और बकासुर के तरफ जाने लगे। उसी वक्त आगत्य सहसा कृष्ण, कृष्ण को आते देखकर क्या किया, तीक्ष्ण तुंडो के सद्बल वो निकल गया कृष्ण। जब वो कृष्ण को निगल गया तब क्या स्थिति हुई, तो जितनी भी लताएं थी, जितने भी वृक्ष थे वो सब मुरझा गए और जितने भी पक्षी कलरव कर रहे थे वो करुण स्वर उसका हो गया। बंदर वो रोने लगे, हिरण इत्यादि करुण स्वर में चीख करने लगे। यह सब की हालत विपरीत हो गई। अभी तक सब अपने अपने भावों में सुंदर मंद मंद मुस्कुराहट में कलरव कर रहे थे, लेकिन हालत क्या हो गई, विपरीत हो गई। कोई रो रहा है, कोई क्रंदन करुण क्रंदन कर रहा है, लता वृक्ष आदि मुरझा रहे, यह सब भाव हो गया। और ग्वाल बालों का क्या भाव हो गया, सुखदेव गोस्वामी कहते कृष्ण महाबकग्रस्तम दृष्टा दृष्ट्वा रामादयोर्भुका बुभोर इंद्रियाणि व विना प्राणं विचेतस। रामादय अर्भ का दृष्टवा, राम आदि अर्भ बालकों को दृष्टवा देखकर, इंद्रियाणि व विना प्राणं, जैसे प्राण के बिना इंद्रियों की क्या स्थिति होती है, जब शरीर में प्राण नहीं होता है तो आंख अपना काम नहीं कर सकती, कान उसका, श्रवण इंद्रिय इसका काम नहीं कर सकता, हाथ पैर इत्यादि सब अपना अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, वैसी हालत हो गई। लेकिन लीला शक्ति ने एक काम किया कि उसकी आंखें जो थी वह खुली रखी और इतनी चेतना दी कि वो आंख से सब कुछ देख सके, बोल न सके, सुन न सके, दौड़ न सके, वो सब निष्क्रिय हो गया, लेकिन उतनी शक्ति रह गई जितना वह सिर्फ देख सके। उन लोगों ने देखा कृष्ण, लेकिन तुरंत क्या हुआ, तम तालु मूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सूनुम पितरम जगत गुरु, जगत गुरु के पिता गोपाल सुनु, और गोपाल को तम तालु मूलम प्रदहंतम अग्निवत, उसके तालु जो थे वो निकल नहीं सका, पेट में नहीं गए कृष्ण, उसके तालु में ही, और उसका तालु जलने लगा। शक्रोपाद जी वहां पर टीका में लिखे है कि शकर होता है, शकर वो मीठा होता है, लेकिन जिसको जीवा का दोष होता है उसको शकर मीठा नहीं लगता, है ना, कड़वा लगता है। उसमें शकर की कोई गलती नहीं है, भगवान के श्री अंग कोमल है, कोमलाति कोमल है, ये तो कमल की पखड़ी इत्यादि से उपमा दी जाती है किसी भी वस्तु को धारणा बनाने के लिए, लेकिन इससे भी कहीं कोटि गुणा कोमल है। लेकिन वही भगवान का श्री अंग आज बकासुर को क्या कर रहा है, जला रहा है, जल रहा था बकासुर। तो बकासुर को बहुत जलन हुआ, बहुत जलन हुआ, तो उन्होंने कृष्ण को बाहर फेंक दिया। जब कृष्ण को बाहर फेंक दिया तो बहुत क्रोध में था, तो फिर कृष्ण को मारने के लिए आया। कृष्ण को, कृष्ण ने दोर्भ्याम बकम कंस सखम सतामपति, सतामपति ने दोनों हाथ से उसकी जो सांस थी वो चीर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कैसे चीर दिया, वीरवत, ये घास होता है, ये तृण होता है, तृण, एक तृण ऐसा होता है जिसमें बीच में गांठ होती है ना, तो गांठ होती है तो हम तृण को जब चीरते हैं तो गांठ जहां पर होती है वहां पर वो अटक जाता है ना, गांठ वहां पर होती है तो अटक जाता है। सुखदेव गोस्वामी का कहने का भाव यह है कि सीधा बिल्कुल बिना अटके चीर दिया। गर्ग संहिता में वहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक कथा का, चीर दिया उसका प्राण भगवान ने हर लिया, उसका उद्धार कर दिया, तब उसकी जो ज्योति है वो भगवान में समाविष्ट हो गई। यह कैसे संभव है, इतना बड़ा बकासुर भगवान को मारने के लिए आया और उसकी ज्योति भगवान में समाविष्ट हो गई। यह सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ था एक साधु के साथ संवाद करने, एक साधु का अपमान करने। वो अगले जन्म में हयग्रीव असुर के पुत्र थे उत्कल, और उनका इतना बड़ा प्रभाव था कि उन्होंने सब देवताओं को जीत लिया। तो मनुष्य लोग की बात ही क्या करनी, देवताओं को जिन्होंने जीत लिया तो मनुष्य लोग तो ऐसे ही तो बड़ा घमंड आ गया, अभिमान आ गया। असुर हाथ में सब सत्ता जाते हैं ना तो वो घमंडी हो जाते, अभिमानी हो जाते, तो उसको भी बड़ा बहुत घमंड था। जहां तहां ऋषियों के साथ संवाद तर्क वितर्क करता था, ऋषियों का यज्ञ हवन इत्यादि बुझा देता था और अपने मन में जो व्याय वो करता था। वो ऐसा करते करते एक दिन राजन मुनि की कुटिया के नजदीक एक सरोवर था, वहां से नदी बह रही थी और भाई इसके नजदीक एक सरोवर था, तो सरोवर में बंसी डालकर मछलियों को तड़पा रहा था बाहर निकालकर, बस उसमें उसको आनंद आता था। वह करने का कारण क्या था, उसको आनंद आ रहा था, मछलियों को बंसी डालकर जल के बाहर लाकर जब मछली को ऐसे छट छटाती हुई देखता था तो उसको आनंद आता था, बस यही रीजन था। और यही आसुरत्व है कि दूसरों को दुख देकर अगर हमको आनंद प्रदान होता है तो ये आसुरत्व का लक्षण है, ये आसुरी भाव है। और प्राय हम सब द्वेष ईर्ष्या से करते हैं और कुछ ठीक इधर हो गया ठीक है, जैसे मैंने ऐसे सोचा इसलिए हो गया, अब वो ठीक होगा, अब वो सीधा होगा, ये सब आसुरी भाव है। द्वेष से ईर्ष्या से किसी को हानि पहुंचाना ये आसुरत्व आसुरी भाव है। यसुरों का यही स्वभाव है, जब मछलियां फड़ फड़फड़ करती थी तो उसको बहुत सुख मिलता था, आनंद मिलता था, और ऋषिगण जहां पर रहते हैं, ऋषिगण की कुटिया जहां पर रहती है वहां सभी पशु पक्षी पंखी इत्यादि जीव आनंदित रहते थे। तो ऋषि तो ध्यान में थे लेकिन उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है बाहर, तो उत्कल के पास जाकर उन्होंने कहा कि देख भाई यह तू जो कर रहा है ना वो सब गलत है। और हम साधारण ऋषि मुनि है, हम यहाँ पर रहते हैं, ये सरोवर पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ पर सब सुरक्षित है, आनंद में, तो तू क्यों इनको तड़पा रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मैं कौन हूं तुमको पता है? साजल मुनि ने कहा आप जो कोई भी हो, लेकिन इस तरह से आपको क्या लाभ है? बहुत मनाया लेकिन माना नहीं। अच्छा तेरा यही स्वभाव है तो कमंडी है, जा तू बक बन जा। और ऋषि के कहते ही तुरंत बक हो गया। जब बक हो गया, जब दुख आया, तब उसको बुद्धि आई कि यह मैंने क्या कर दिया। दुख में ही बुद्धि ठिकाने लगती है ना, तब उसको याद आया कि अब क्या हो गया। तब बहुत आजीजी की उन्होंने कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, गलती हो गई, अब आप ही मेरा उद्धार कर दीजिए, आप संत है, संत का स्वभाव यह, उसको स्वभाव वो याद कराने लगा कि आपका स्वभाव चाचल मुनि संत का स्वभाव है, नवनीत समान है ना, संत हृदय नवनीत समान है कोमल, दया आ गई। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण द्वापर में आएंगे और उन्हीं का स्पर्श पाकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो सब लोगों को देखते 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 उनकी जो ज्योत थी भगवान समावेश हो गई। लेकिन इधर वृंदावन में क्या हो रहा था, जब देवताओं ने देखा कि अब बकासुर का उद्धार हो गया है, तो देवताओं समाकिर नंद मल्लिका दीजिए अलग अलग पुष्पों की वर्षा करने लगे और छह आनक शंख संस्तवे आनक दुंदु भी बजाने लगे, कोई शंख बजाने लगे, कोई नृत्य करने लगे, कोई गाने लगे, भगवान की इस दिव्य मनोहर लीला को सभी देवता अपने अपने से कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई शंख बजाता है, कोई कोई देवता वहां पर भाव दिया गया कि कोई कोई देवताओं के पास पुष्प नहीं थे तो वो दूसरे दूसरे पुष्प लेने गए, रुको रुको अब मेरी बारी, अब मेरी बारी करके सब देवताओं पुष्प भगवान के ऊपर डालने लगे। यह सब दृश्य देखकर तद वृक्ष गोपाल सुता विस्मिरे विस्मित हो गए गोपाल सुता की क्या हो रहा है, कोई आकाश में नगारा बजा रहा है, कोई फूल डाल रहा है और कृष्ण आराम से खड़ा है, ये सब क्या हो, विस्मित हो गए। मुक्तम बकाश्याद उपलब्ध बाल का रामादय प्राण इंद्रियो गण, जैसे प्राण आ गया, इंद्रियों में प्राण आ गया, स्थानागतम तम परिरज निर्मिता प्रणीय वस्तान तत्गुण, कृष्ण को आलिंगन कर लिया, परमानंद निर्वृता, निर्वृता का अर्थ होता है आनंद, परमानंद लाभ कर लिया, परिरज का अर्थ होता है आलिंगन किया और वह सब वत्सान वृद्धमैत्य अपने अपने बछड़े को लेकर कहाँ गए, वृंदावन में अपने घर गए। पीतवा तद विस्मिताम गोपा गोपाद्रित अति प्रियाद्रिता तद श्रुतवा गोप गोपी, इस बार तो भगवान श्री कृष्ण ने कहना भूल गए थे कि देखो घर में जाकर बताना नहीं, ये तो भूल गए। तो सब ग्वाल बालों ने माता यशोदा रोहिणी को कहने लगे, नंद इत्यादि, नंद उपनंद इत्यादि को कहने लगे। तो यह सब सुनकर वह विस्मित हो गए और भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे, एक नजर से देखने लगे। वहां पर भाव दिया गया है चक्रवर्ती पाद जी ने, तो इसलिए देख रहे हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है ना, इसलिए बारीकी से श्री अंग से शिखा तक सब देख रहे हैं, बस बिना निमेष देख रहे हैं। दूसरा दूसरा भी बहुत भाव है और इसके बाद यह श्लोक कह रहे हैं, अहो बताशे बालस्य बहु मृत्यु वो भवन। गोप गोपी कहने लगी कि अहो बताश्य, कितनी आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है कि बालस्य बहु मृत्यु अभवन, इस बालक कृष्ण के ऊपर अनेक अनेक मृत्यु आए, अभवन आए, अनेक अनेक, कभी पूतना आई, कभी त्रिनाव्रत आया, कभी वत्सासुर आया, कभी बकासुर आया, कभी अघासुर आया, आ गया, अभी आने वाला है। तो ये सारे सारे पूतना इत्यादि बहुत सारे सारे अनेक अनेक असुरगण आए, मृत्यु के कारण बनकर आए। अपि आसीत् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयं, यतः पूर्वं भयं, जिससे हम लोगों को पूर्व में भय था, तेषां विप्रियं आसीत्, उनका ही विप्रिय हुआ, मतलब अप्रिय हुआ, उन्हीं की ही मृत्यु हुई। यह शब्द, यह श्लोक में जो नीचे की लाइन है, अपि आसीत् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयं, यही सबसे बहुत सुंदर बात है। क्या सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत किया है सुखदेव गोस्वामी। क्या कहते हैं, यत पूर्वम भयम कृतम, जिससे पूर्व में मतलब पहले भय था, तेषां विप्रियम आसीत, उनका ही अप्रिय हुआ। चक्रवर्ती जी ने वहां पर एक पॉइंट लिया, उन्होंने टीका की है, मृत्युव मृत्यु हेतव, जो मृत्यु के कारण बनकर आए थे उनका ही मृत्यु हो गई। भयम कृतम निरपराधानाम अस्याकम बालकस्य यस्मात् अपकार प्रथनम कृत तस्मात्। गोप गोपीगण कह रहे कि अहम निरअपराधानाम, हम लोग निरअपराधी थे, हम लोगों को और हमारे बच्चों को वह भय उत्पादन करने के लिए आए, लेकिन प्रथमम कृत तस्मा, लेकिन वही मृत्यु का कारण हो गई। बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो किसी को दुख देता है ना, वह दुख उसके पर ही आता है। इसलिए वैष्णव का सबसे प्रथम स्वभाव होता है क्षमा, क्षमा से पाप कट जाता है। अगर हम किसी को किसी भी तरह से, तन से, मन से, किसी भी तरह से, वाणी से अगर दुख देंगे तो निश्चित रूप से वह दुख हम पर आएगा ही। यह शास्त्र का अटल सिद्धांत है, कर्म किसी कर्म से नहीं कटता है। जब तृणाव्रत का वध हुआ, तृणाव्रत आकर भगवान को, श्री कृष्ण को लेकर चले गए आकाश में, और उसको बहुत भार लगने लगा, बहुत वजन लगने लगा, तो उन्होंने कहा छोड़ दो, लेकिन कृष्ण ने जैसे बच्चा जैसे पकड़ता है उसकी गर्दन पकड़ ली, तृणाव्रत नीचे आया, वह सब व्रत के गोप गोपी इत्यादि आए, और उसे आए और देखा इस दृश्य को, तो सबसे पहले एक श्लोक उसके श्रीमुख से निकला, अहो बत अद्भुतम एष रक्षा, कितनी अद्भुत, कितनी आश्चर्य की बात है, एष रक्षसा, देखो तो इस राक्षस के द्वारा हमारे बच्चे को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन पुनः अभ्यगात, लेकिन फिर भी वो जीवित ही रहा। इसके बाद कहते हैं कि हिंस्र स्व पापे न विहिंसित खल, खल मतलब दुष्ट, जो दूसरों को दुख देता है उसको दुष्ट कहा जाता है। वो खल हिंस्र, हिंसा परायण, स्व पापेन अपने पाप से ही विहिंसत मारा दिया। कृष्ण ने कुछ नहीं किया, उसका भाव करने का यह था कि कृष्ण ने किसने कुछ नहीं किया, स्व पापेन विहिंसत वह अपने पाप से ही मारा गया, दूसरों को मारने के लिए आया था इसलिए वह स्वयं उसके पाप से ही मारा गया। साधु समत्वेन, लेकिन साधु समान होता है समत्वेन, राग द्वेषादि से रहित रहता है, राग द्वेषादि से शून्य रहता है। गीता में भी भगवान कहते हैं समत्वेन योग होते हैं, इसलिए वो भयाद विमुच्यते वहां पर कहते हैं कि साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, साधु अपने समत्व गुण से समान गुण से भय से मुक्त रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने ही पाप से अपने ही स्वभाव से अपने ही बुरे कर्म से उसका आनंद हो जाता है। और यही बात माता ने ध्रुव को कहा है, जब ध्रुव का अपमान हुआ वो माता के पास आया तो वह और उनकी माता, क्या था उनकी माता का नाम, हाँ सुनीति, जब सुनीति के पास आए तो उन्होंने एक उपदेश दिया बहुत सुंदर, हृदय पर हाथ रखकर कही अगर हम लोग होते तो कोर्ट में जाते कहते कि तेरा भी बेटा आधा अधिकार है, चल कोर्ट में चलते हैं, हम देखते हैं कि क्यों नहीं देते, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं कहा, इतिहास तो उनका ही लिखा जाएगा ना, जिन्होंने दुख सहन करके भी दूसरों को सुख प्रदान किया, यही साधुओं का स्वभाव। वो रड़ती हुई अपने बेटे को एक उत्तम शिक्षा दे रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृजिनस्य पारम, अपने दुख को पार न पाता हुआ देखती हुई वह सुनीति बालकम आह बाला, वह बाला अपने बालक को इस प्रकार कहा, क्या कहा, मां मंगलम तात परेशु मंस्था, मां मंगलम तात, हे तात परेशु मां अमंगलम मंस्था, हे तात हे पुत्र परेशु दूसरों को कभी भी अमंगलम मां मंस्था, अमंगल मत मानना, दूसरों का कभी अमंगल मत करना, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो हे पुत्र दूसरों का कभी अमंगल मत करना, क्योंकि भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत, भुक्ते जनो यत पर दुखद, यत पर दुखद, जो दूसरे को दुख दिया जाता है वह ही दुख तत भुगते, उनको भोगना पड़ता है। दूसरों को मन से भी वाणी से भी क्रिया से भी किसी भी तरह से कुछ भी दुख देते हैं ना, तो यह मत समझ ली कि वह व्यक्ति दुखी हो गया, लेकिन वह दुख अपने पर आ ही जाता है और कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। गीता में भीष्म ने उदाहरण दिया कि जैसे परछाई व्यक्ति का छाया नहीं छोड़ती, और जैसे करोड़ों गायों में उसके बछड़े अपनी माँ को ढूंढ ही लेते, वैसे ही हमारा जो कर्म है वह करोड़ों जन्म पहले क्यों नहीं किया गया हो लेकिन वो ढूंढ ही लेता है। दूसरों के लिए दिया हुआ दुख व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, यह माता ने उपदेश दिया, यह माता ने कहा, और भगवान शिव ने भी यह उपदेश पिपला जी को दिया। जब वज्र दधीचि मुनि की हड्डी से वज्र बनाया और वज्र से बत्रासुर को मारा, तब उसके पुत्र थे पिपलाद, उनको उन्हीं माता उनकी माता ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, देवता गण आए थे, तुम्हारे पिता ने उनको दे दिया उसकी हड्डी और उन्हीं से वो गुजरा। तो उन्होंने कहा कि देवता स्वार्थी है, उनके लिए मेरे पिता का प्राण चला गया, अब मैं देवताओं का विनिष्ट करके ही रहूंगा। तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया तपस्या करके। भगवान शिव ने कहा कि वत्स आदेश कीजिए, क्या करूं मैं आपके लिए, मैं प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा कि देवतागण बहुत स्वार्थी हो गए हैं, वो लायक नहीं है यहाँ पर रहने के लिए, अब किसी भी तरह से उनकी हत्या होनी चाहिए, उनका नाश होना चाहिए, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं भगवान के पार्लियामेंट में, जैसे यहाँ के लोग करने लगे। आप तीसरा नेत्र खोलिए, भस्म कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि बेटा, ये मैं सौम्य रूप से आया हूँ तेरे पास, इसलिए तू मेरे सामने अभी खड़ा रह रहा है, ये सौम्य रूप है मेरा। अगर मैं रुद्र रूप में आता तो मेरे सामने भी तू नहीं खड़ा रह सकता, तो तू तीसरे नेत्र खोलने की बात उससे विनाश हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको प्रसन्न किया है, पिपलाद ने कहा कि मैंने आपको प्रसन्न किया है, इसलिए आपको यह कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तू एक काम कर, तू अपने हृदय में मेरे रुद्र स्वरूप का पहले ध्यान कर। जब उन्होंने अपने हृदय में भगवान के श्री रुद्र स्वरूप का ध्यान किया तो क्या देखा उन्होंने, उसका सारा हृदय जलने लगा, उसकी सब इंद्रियों जलने लगी और भस्म होने लगा। उसी वक्त उन्होंने भगवान को हृदय से पुकारा तो भगवान चंद्रशेखर फिर वहां हाजिर हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या देख रहा हूं, ये मेरी हालत क्या हो गई, मैंने तो ध्यान में देखा कि मैं खुद मर रहा हूं, मैं खुद जल रहा हूं। भगवान ने कहा कि विनाश का आह्वान जहां से शुरू होता है ना, विनाश वहां से ही शुरू होता है जहां से उसका आह्वान होता है। तू विनाश का आह्वान कर रहा है इसलिए विनाश तो तेरे से ही शुरू होगा ना। लेकिन वो बोला मुझे छोड़कर, अरे लेकिन भगवान शिव ने कहा कि यह कैसे संभव है, तू क्या समझता है कि कान का देवता है, आंख का देवता है, नासिका का देवता है, मुख का, सब इंद्रियों पर सब देवताओं का वास है, तो उन सबको तो खत्म करना ही पड़ेगा ना भाई, बिना खत्म किए कैसे काम होगा। तब उनको बुद्धि आई, तब भगवान शिव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि दूसरों को दुख देने से पहले वह दुख अपने पर ही आ जाता है, इसलिए तू किसका पुत्र है वह तो जरा सोच। तेरे पिताजी ने यश प्राप्त किया है त्याग देकर, त्याग दिया था ना अपना शरीर, दूसरों के लिए त्याग देना बहुत बड़ी बात है, हम 10 रुपया ठाकुर जी के लिए नहीं त्याग सकते, एक बिल्कुल सत्य घटना, टाइम 2 मिनट का लेकिन बता देता हूँ। गिरधारी प्रभु को, गिरधारी का श्रृंगार गिरधारी ही करते हैं, तो गिरधारी गोपाल प्रभु अक्षय तृतीया के दिन उसको श्रृंगार करना था, ड्रेस का फूलों का ड्रेस बनाना था और उसको श्रृंगार करना था। तो 15 दिन पहले मिले मुझे के प्रभु जी, तो राधा गिरधारी को हम अक्षय तृतीया के दिन फूल का ड्रेस से सजाएंगे, तो मैं समझ गया कि उसका क्या कहना है। मैं कहा कि बहुत ठीक बात, ठीक है। वो बोले कि उनमें थोड़ा पैसा लगता है ना प्रभु, मैं कहा थोड़ा तो कितना लगता, 25-30 हजार लगेगा प्रभु, पहले 20 हजार का, तो फूल का दाम बढ़ गया है तो 25-30 लग गए। मैं बोला कि मैं प्रयास करूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं भीख मंगा हूँ, तो मैं बोला कि मैं मांगूंगा किसी के पास क्या होने। तो बहुत भक्तों को मैंने बात किया,
ये बात सब आप अपने हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कथा का कितना प्रभाव होता है। और कथाकार बहुत एक कथा कहते रहते हैं। एक गुलाब का फूल था, तो एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के लिए लेने के लिए गया और एक व्यक्ति ठाकुर जी के लेने के लिए गया। उसके पास एक ही गुलाब था, लाख रुपया तक उसकी बोली लगाई। उसके बाद जो ठाकुर जी के लिए लेने के लिए आया था, उन्होंने ले लिया किसी भी दाम में, मानो लाख रुपये, सवा लाख, दो लाख, पांच लाख। तो फिर वो गुलाब बेचने वाला था, उन्होंने पूछा दोनों को कि आपको ये गुलाब क्यों चाहिए। तो वो बोला कि मुझे मेरी प्रेमिका के लिए चाहिए, लेकिन वो लाख रुपये की नहीं है, और गुलाब की कीमत थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है, मैं कल परसों लेकर दे दूँ। दूसरे व्यक्ति जो भक्त था उसको पूछा कि तुम क्यों लाए, तुम क्यों ले जा रहे हो। तो बोला कि मैं अपने ठाकुर के लिए ले जा रहा हूँ। अगर इस गुलाब की कीमत आप 1 करोड़ रुपया भी कहते तो मैं खुद बिक जाता, लेकिन ये गुलाब मैं अपने ठाकुर को खड़ा कर ही रहता। इसी तरह आप लोगों की तरह सभी भक्त ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब ठाकुर जी को एक फूल देने की बात आती है ना, तो सब लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। यही अंतर है कथा में। और हम इसी बात, इसी ताली गिराने के लिए ही मैंने यह कथा इतनी रोचक बनाई, वरना मैं 1 सेकंड में भी यह कथा कह सकता था। हम ताली तो बजा लेते हैं, लेकिन ठाकुर के लिए त्याग की जब कीमत आती है ना, तो मैं कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला, ये दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं। बहुत दूर की बात है अभी भक्ति। भगवान कौन कितना देता है, भगवान को 1 करोड़ से, 100 करोड़ से या 1000 करोड़ से प्रसन्न नहीं कर पाते। कौन किस भाव से कितना देता है, भगवान उतना ही उसके बाद से ग्रहण करते, उतना ही प्रसन्न होते हैं। सिद्धांत यह है, हमारे पास 5 लाख है तो हमने 1000 दे दिया, 2000, यह बात नहीं है। किस भाव से कैसे देता है, बात यह है। आपने कितना दिया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने दूसरों को दिखाने के लिए दिया, दूसरों को गिनाने के लिए दिया, तो उसकी वैल्यू जीरो है, जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। सब भक्तों को मैंने यह कथा सुनाई, मैंने कहा कि हम सब लोग इस कथा को कहते हैं, इस कथा पर तालियां देते हैं जब, लेकिन सिद्धांतिक प्रैक्टिकल जब ये बात करने की आती है, तब मैं और आप सब मुंह फेर लेते हैं, ठाकुर नहीं प्रसन्न होंगे। यह सब सिद्धांत की बात है। यह हमारा और आपका सबका स्वभाव है। हम सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, फिर भी हरे कृष्ण महाप्रसाद है, खिचड़ी सब राधे, यह स्वभाव है। देना है ठाकुर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ब्याज से लेकर भी अगर ठाकुर मांग रहे, ठाकुर हमारा ड्रेस ले रहा है, तो दे देना चाहिए, यह भाव होना चाहिए। आता कहाँ से, उनकी कृपा से आता, तो जाता के हम जब देंगे तब जाएगा वहां, ये नहीं चलेगा। दोहरा पन ठाकुर के पास नहीं चलेगा। मानव बिना तो प्रहलाद महाराज जी अपनी स्तुति में कहे कि ये अज्ञानियों के द्वारा क्या भगवान ग्रहण करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं। मानव जनाद विदुष, भगवान को जो जो भी मान देते हैं, जो जो भी उपहार के रूप में देते हैं, भगवान क्या उसको ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं। उसको जरूरत भी नहीं है, इस अज्ञानी जीव के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। करुणा गुणित, करुणा करके वो ग्रहण करते हैं। और करुणा कब उत्पन्न होती है, जब हम असमर्थ होते हुए भी हम ठाकुर को देने की कोशिश करते हैं, तब ठाकुर प्रसन्न होते हैं। ये क्या बात हो गई, हमारे पास करोड़ों है और 1 रुपया हम दे दिया, और वो भी दिखाने के लिए, नाम के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हरे कृष्णा, मैंने जो कहना था कह दिया, आप लोगों को कहना है तो कह दीजिए। वांछा कल्प द्रव्य से कृपा सिंधु पतिता नाम पावने के ग्रंथराज श्रीमद भागवत की, श्री प्रभुपाद की हिदाई गौर प्रेमानंद।